श्रीमद् भागवत का हम मंगलाचरण के ऊपर विचार कर रहे थे। कई प्रकार के मंगलाचरण होते हैं। बहुत सालों से आप सत्संग सुन रहे हैं, आपको पता होगा कुछ विघ्न के विनाश के लिए होते हैं और मंगल की कामना से होते हैं, और ये जो मंगलाचरण है ये वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है भागवत का। इसमें संपूर्ण भागवत में क्या प्रतिपाद्य है, जैसा एक फल होता है, और फल भी क्या कहें, एक बीज होता है। आपने बट का बीज देखा होगा, बट का फल देखा होगा आपने, लेकिन बट का बीज बहुत कम देखा होगा, बहुत छोटा होता है वो। लेकिन उस छोटे से पेड़ में, बीज में सारा पेड़ छुपा हुआ होता है। इसी प्रकार से भगवान वेदव्यास ने श्रीमद् भागवत के इस मंगलाचरण के श्लोक के अंदर संपूर्ण भागवत में क्या है, यदि गहराई से आप इस श्लोक का विचार करें तो आपको कहीं भागवत को देखने की जरूरत नहीं है। इसको बोलते हैं वस्तु निर्देश आत्मक, संपूर्ण वस्तु का इसमें निर्देश कर दिया गया है। अब निर्देश तो बहुत समझदार आदमी करते हैं और बहुत समझदार आदमी समझते हैं, न इतना समझदार मैं हूं और शायद आप भी नहीं हैं। दक्षिणामूर्ति ने निर्देश किया था और ऋषियों ने समझ लिया। गुरोस्तु मौनम व्याख्यानम शिष्यास्तु छिन्न संशय, सब संशय क्षीण हो गए, ऐसा कर दिया। तो यहां पर हमने कल दो पंक्तियों की व्याख्या कर दी थी। जनमाद्यस्य यतो अन्वय तरतस्यार्थी सुविद्य स्वराट तीने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत् सूरया। हृदय शब्द का अर्थ किया था संकल्प मात्र से। सगुण ब्रह्म की जब चर्चा होती है उसमें एक आकार विशेष जब सामने आता है, उस सृष्टि के विधाता के रूप में वो ब्रह्मा जी का आता है। लेकिन आप आश्चर्य में पढ़ेंगे, भागवत आपने सुना होगा, उस व्यक्ति के हृदय के अंदर भी अज्ञान था, उसके अंदर भी अज्ञान था। उस अज्ञान को निवृत्त करने के लिए उस व्यक्ति ने तप किया। आपको मैं बताता हूं, कभी आप भी अपने को थोड़ी अज्ञानी समझते हैं तब तो तप करते हैं। घर में आप सोफे पे बैठते होंगे, चाय की प्याली हाथ में होती होगी, यहां पे आप एक घंटे बैठे हैं, ऊपर से बाबा जी की डांट सुन रहे हैं, डांट पड़ती है, थोड़ी मुस्कुराते हो, केवल सुनाने की आदत है, सुनने की आदत नहीं है। अपनी वासनाओं के विपरीत जब व्यक्ति संयम करता है उसी का नाम तप होता है। ये प्रेमपुरी जी महाराज की एक बहुत बड़ी कृपा है, इनके सानिध्य में हम आकर के, ये जो बंदर हैं, ये बंदर भी क्या बन जाते हैं, ऋषि बन जाते हैं एकदम शांत। ये क्या है, ये तप है। आप ऐसा नहीं समझना, आपके अंदर जो ज्ञान का प्रवेश हो रहा है एक जबरदस्त तप है। आप नींद का मुंह छोड़ करके यहां आते हो, इससे बड़ा क्या तप हो सकता है? कष्ट उठा करके यहां आते हो, इससे बड़ा क्या तप हो सकता है? बहुत बड़ा तप है। जब व्यक्ति तप संपन्न हो जाता है, तब व्यक्ति को ईश्वर की सामर्थ्य का अनुग्रह प्राप्त होता है। देखो, सामर्थ्य का बोध नहीं, अनुग्रह। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, हृदय का अर्थ क्या बताया? संकल्प मात्र से ब्रह्मा जी को भगवान ने अपने संकल्प मात्र से सृष्टि विषयक संपूर्ण ज्ञान दे दिया। सृष्टि कैसी बनानी है ये ज्ञान दिया, और सृष्टा कैसा है ये ज्ञान दिया। हाँ, ये भी बड़ी मजेदार बात है, क्योंकि इतनी विलक्षणता है कि वस्तु निर्देश आत्मक है। आप लोग तो ऐसे ही पढ़ के चले जाते हैं, कभी कभी तो बोलना नहीं चाहिए। भागवत में जन्माद्यस्य यथा श्लोक नहीं बोल सकते भागवत कर्ता, वो जन्मांध्यस्य बोलते हैं, और भीड़ लाखों की रहती है। ये अध्यात्म जगत का पतन इससे ज्यादा कुछ हो नहीं सकता है, क्योंकि आगे लिखा है यत मुह्यन्ति सूरया। कल मैंने आपको थोड़ा निर्देश किया था, वैष्णवों के बड़े बड़े जो आचार्य होते हैं उनको सूरी शब्द का प्रयोग करते हैं उनके सामने, जैसे आचार्य लगता है ना ऐसे सूरी। मैंने कहा था श्री हरि सूरी आचार्य का, जो परमात्मा के स्वरूप को समझते हैं। ब्रह्मा जी को जो ज्ञान दिया वो सृष्टि कैसी बनानी है, लेकिन जब वेदांत की दृष्टि से थोड़ा विचार करते हैं, ये अनुग्रह प्रदान है ना, तो अनुग्रह जब होता है तो थोड़ी साधना होती है और थोड़ी कृपा होती है। ब्रह्मा जी ने साधना की और ठाकुर जी ने कृपा की, उनको यह पता लग गया कि सृष्टि कैसी बनानी है। तो ऐसा लिखा है वहां, आत्मना आकाश संभूत आकाशात वायु, ये आकाश से हवा बनाई और हवा से तेज से जल और जल से पृथ्वी। ये ज्ञान, क्योंकि सृष्टि बनाने का क्रम और फिर विलय का कर्म ये आपस में मिलना चाहिए। भागवत के हिसाब से जब प्रलय का वर्णन भागवत में आया है, महाकवि कालिदास ने भी किया है वर्णन, जातम वंशे भुवन विदिते पुष्करावर्तकानाम जानामि त्वाम प्रकृति पुरुषम कामरूपम मघोना। ये जरा कथा अलग छोड़ी चली गई, लेकिन सामर्थ्य की बात बता रहा हूं मैं। जब किसी आदमी से काम लेना होता है तो उसकी प्रशंसा करनी पड़ती है। कालिदास का एक ग्रंथ है मेघदूत, उसमें एक आदमी अपनी पत्नी से बिछुड़ जाता है किसी श्राप के कारण, तो अपनी पत्नी को वो पत्र लिखता है और वो रहता है चित्रकूट के पास में, और उसकी पत्नी रहती है कहां? कैलाश के आसपास। अब उसको पत्र भेजना, आजकल की जैसे एसएमएस की व्यवस्था थी नहीं उस समय, एसएमएस की व्यवस्था भी हुआ, इंटरनेट काम नहीं करता, हुआ नेट भी काम नहीं करता किधर, कैलाश मानसरोवर में। तो उसने सोचा पत्र भेजना जरूरी है, तो उसने मेघ को दूत बनाया। तो उसने कहा है, जातम वंशे भुवन, हे मेघ तुम सामान्य नहीं हो, मेरा काम तो बहुत तुच्छ सा है, तुम्हारे से तो जब सबसे बड़ा काम इंद्र को प्रलय करनी होती है वो भी तुम्हारे चरणों में आता है, तुम्हारी शरण ग्रहण करता है। इसलिए विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान का एक नाम स्तुति प्रिय है, और सभी स्तुति प्रिय होते हैं, तुम्हारी स्तुति करें तुम्हें अच्छा नहीं लगता, और अच्छा लगना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे अंदर जो ईश्वर बैठा हुआ है वो उसकी स्तुति हो रही है, और जब वो स्तुति करता है तो प्रसन्नता होनी चाहिए, क्योंकि कहते हैं स्तुति प्रिय है वो, और जब कोई स्तुति करता है, भगवान शंकराचार्य का भाष्य आप देखो, पुष्पहास पढ़ा कभी विष्णु सहस्त्र नाम, उस समय जब स्तुति होती है तो भगवान हंसते हैं, तो भगवान की हंसी मोगरे के फूल के समान है, जब हंसते हैं तो खुशबू निकलती है, पुष्पहास। भगवान ने संकल्प मात्र से, हम तो तुमको गाली दे दे के कुछ नहीं समझा पाते, संकल्प मात्र से ब्रह्मा जी को सृष्टि कैसी बनानी है ये ज्ञान दिया, और सृष्टा का स्वरूप कैसा है ये ज्ञान दिया। बोले ये ज्ञान क्या है फिर, तो आगे लिख दिया, यत मुह्यन्ति सूरया, बड़े से बड़े व्यक्ति को ये ज्ञान नहीं हो सकता महाराज कि आकाश से वायु कैसे बनी है। वायु से अग्नि कैसे बनी, और अग्नि से जल कैसे बना, और जल से पृथ्वी कैसे बनी, ये करामात उसी की है। ये हो गई क्या भगवान की सामर्थ्य और ब्रह्मा जी की तपस्या, क्योंकि किसी व्यक्ति के प्रति निष्ठा आपकी तभी होती है जब आपको उसकी सामर्थ्य का और ज्ञान का बोध होता है, तभी आपकी वहां पर निष्ठा होती है, यदि आप सच्चे साधक हैं तो, अन्यथा नहीं। अच्छा आगे बता रहे हैं, देखो, तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा, तेज में वारी, वारी मैंने जब सूर्य की किरणें जल में पड़ती हैं तो सोने के समान चमकती हैं, जब रेत में पड़ती हैं तो पानी के समान चल पड़ती हैं। तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो, विनिमय समझते ऐसा, तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो त्रिसर्गो मृषा, अमृषा उसके लिए दृष्टांत यही है कि सुवर्ण से बने हुए जो पदार्थ हैं कुंडल आदि, वो कुंडल के रूप में अमृषा हैं, मृषा हैं, और सुवर्ण के रूप में अमृषा हैं। बात समझ में आ गई, सुवर्ण के रूप में वो अमृषा हैं और मृषा हैं। इसी प्रकार से एक माया परमात्मा के आश्रित होने के कारण, परमात्मा का स्वरूप होने के कारण, परमात्मा से भिन्न सत्ता न होने के कारण ये परमात्मा रूप ही है, और परमात्मा से भिन्न इसकी सत्ता क्या है? निरस्त है। अच्छा, धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम। धामना बोलते हैं स्वयं प्रकाशत्व जो परमात्मा का धाम है, उसको बोलते हैं धामना। निरस्त मैंने हटा दिया। और आप बहुत विलक्षण, आप लोग तो प्रेमपुरी वाले तो भागवत सुन सुन के तो काफी टपक चुके हैं उनके कान। भागवत में कुहक परीक्षित को बोला है, कुहक परीक्षित है, नहीं परीक्षित नहीं, तक्षक को कुहक शब्द का प्रयोग आया है भागवत के अंदर। परीक्षित के लिए नहीं, तक्षक के लिए कुहक शब्द का प्रयोग आया है। वो जैसे डस लेता है, इसी प्रकार ये माया जो है ना, ये आदमी को डस लेती है। उस माया को परमात्मा ने अपने स्वयं प्रकाश स्वरूप से निरस्त कर दिया, निरस्त कर दिया। फिर व्यक्ति की जो सामर्थ्य है, साधना का स्थल भी सही होना चाहिए। थोड़ा आपको कभी बताया तो होगा महापुरुषों ने, ऋषियों ने ये विचार किया कि बहुत साधना करते रहे, शास्त्रों में लिखा है, आचार्यों ने भी लिखा है, कुर्वन् नेवेह कर्माणि जीजी विषय सद्गुण क्षमा एवं त्वयि नान्यथे तोस्ति न कर्म लिप्यते। प्रायः जब आदमी वृद्ध हो जाता है तो बुद्धि आदमी का साथ छोड़ देती है, आदमी अपनों को नहीं पहचानता, साधना का तारतम्य टूट जाता है। कोई ऐसे महापुरुष होते होंगे, मेरे जीवन में एक व्यक्ति ऐसे हमने देखे हैं, हमारे गुरुजी, जिस दिन शरीर शांत हुआ उस दिन अवधेश यतन जी के यहां भंडारा खा के आए और पंचदशी के ऊपर टीका लिख रहे थे। अंतिम समय तक इतना स्वस्थ रहना मनुष्याणाम सहस्रेषु, कई हजारों लाखों व्यक्ति में कोई व्यक्ति ऐसा होता है, नहीं तो ये इंद्रियां धोखा दे देती हैं, क्योंकि हमने इन इंद्रियों का हमेशा दुरुपयोग किया। ये धोखा ऐसा कोई नहीं देता है, धोखे हमें जो धोखा देते हैं उनके पीछे कहीं ना कहीं हमारा हाथ होता है, क्योंकि उनके साथ कभी जाने अनजाने में हम ऐसा व्यवहार करते हैं कि वो धोखा देने के लिए वो मजबूर हो जाते हैं। होते हैं कि नहीं होते? इंद्रियां धोखा दे देती हैं। इसके लिए ऋषियों के बहुत जन्म हुए। ऋषियों ने सोचा बहुत बार तपस्या करते हैं, एक सीमा तक पहुंच जाते हैं और साधना पूरी नहीं हो पाती, तो क्या करें? तो सब हम लोग अंतिम में क्या बोलते हैं, बस जो तकदीर में लिखा है वही बात होती है। तो ऋषियों ने सोचा, जरा जो लिखा है वो बात तो सही है, जरा थोड़ी लिखने वाले को तो पकड़ा जाए थोड़ा सा। वो लिखने वाले के पास में गए, कौन? ऋषि लोग। उन्होंने कहा, आपसे कुछ मांगना नहीं है, आपसे एक प्रार्थना करनी है मुझे। ऋषि ने कहा, हमको कोई ऐसी जगह बताओ जहां हमारी मरने के पहले, कृष्ण ने गीता में क्या कहा, सक्नोति इह वय सोढ़ुम प्राक शरीर विमोक्षणात्, ये शरीर छूटने के पहले पहले आत्मज्ञान हो जाए, ऐसी जगह बताओ। तो असली जो ऋषि होते हैं ना, ऐसा असली बाबा जी तुमको अभी तक मिला नहीं कभी, असली बाबा जी मिल जाए ना और तुम्हारे पीछे पड़ जाए तो तुम्हें पीछा छुड़ाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब वो बैठ गए ब्रह्मा जी के पास में, ब्रह्मा जी ने कहा चाय पियो, बोले नहीं चाय वाय नहीं पियेंगे, हमारी तो आप शंका का समाधान करो बस, कुछ नहीं, कुछ खा लो, बोले नहीं, कुछ पी लो, बोले नहीं, बोले हमारी शंका का समाधान करो। तो ब्रह्मा जी पीछा सभी छुड़ाते हैं, तुम भी छुड़ाते हो, कोई भिखारी मिल गया तो क्या करोगे। एक बारी की बात है, नीचे हरिभाई ऑफिस में बैठा हुआ था, एक महात्मा कोई आ गया। वो महात्मा ने कहा हरिभाई मैं यज्ञ कर रहा हूं, मेरे को कुछ डोनेशन चाहिए। हरिभाई ने जेब से 100 रुपए की नोट निकाली और उसको दी। उसने कहा इससे कोई यज्ञ होगा क्या? उसने कहा ला वापस दे दे फिर। वो 100 रुपए लेके चला गया। बोले महाराज जी वापस दे दो, नहीं होगा तो लेके चला गया। वो भी जानता है कि यज्ञ नहीं कर रहा है ये, लेकिन योग वशिष्ठ में लिखा है येन केन उपायेन यस्य कस्यापि संतोषम जनयेत राम तदेव ईश्वर पूजनम। ईश्वर का पूजन ये नहीं है कि तुम पत्थरों को पूजते हो, जहां साक्षात ईश्वर विद्यमान है उसको यदि आपने खुश कर लिया उसी का नाम ईश्वर पूजन है, और कुछ ईश्वर पूजन नहीं है। चलो तो ब्रह्मा जी ने अपना पीछा, वो महात्माओं से पीछा छुड़ाना बड़ा कठिन काम है, तो उन्होंने कहा ये लो मैं अपना ये रथ का पहिया छोड़ रहा हूं। उसको बोलते हैं क्या, रथ का पहिया होता है ना, वो चक्र, वो छोड़ा उन्होंने, और उन्होंने कहा जहां पर ये पहिया बिखर जाए वहां पर बैठ करके आप तपस्या कर। तो निमी विशीर्णा, हाँ निमी विशीर्णा यत्र, उसको बोलते हैं नैमिषारण्य, वहां पर जाकर के ऋषि इस आत्म तत्व का चिंतन करते हैं, वहां पर काल की गति नहीं पहुंचती। तो यहां पर भी हम लोग प्रेमपुरी जी महाराज के सानिध्य में आते हैं तो यहां पर भी काल तो नहीं पहुंचता, काल थोड़ी समय के लिए समझा, और जब काल ठहरा हो और साधना हो रही हो इससे श्रेष्ठ तो कोई बात हो नहीं सकती है। और यदि पुण्य न हो तो आदमी यहां पहुंच नहीं सकता। तो धामना स्वेन, धामना का अर्थ हो गया वो अप्रकाश स्वरूप, प्रकाश स्वरूप स्वयं, उसने निरस्त कुहकम, कुहक शब्द को बोला आपको किसको, तक्षक के लिए भी प्रयोग आया, अज्ञान जो डस देता है आदमी को, तो और कोई नहीं डसता, अज्ञान ही आदमी को डसता है, ये अज्ञान जो डसने वाला है इस अज्ञान को भगवान ने स्वयं के ज्ञान से निरस्त कर दिया। अब वो निरस्त करने वाला कौन, इसकी मैंने थोड़ी आपको वस्तु निर्देश, ये भागवत का प्रतिपाद्य इन्होंने श्री कृष्ण को नहीं बताया, प्रतिपाद्य बता दिया किसको, सत्य को। अब बड़ी मजेदार बात यह है, नास्तिक हो वो भी सत्य से प्रेम करता है, झूठा आदमी हो वो भी, तुम कितना भी झूठ बोलो लेकिन सामने वाले से यही अपेक्षा करते हो कि ये क्या बोले, कारण इसका क्या है, क्योंकि सत्य के प्रति सबका प्रेम है। अच्छा अब थोड़ा जो इस प्रकार का जो परमात्मा है, वही परमात्मा जब सगुण विग्रह में आ गया उसी का नाम श्री कृष्ण पड़ गया। तो कहीं भी यदि आप अपने को समर्पित करते हैं तो उसके प्रभाव का आपको ज्ञान होना चाहिए। इसके लिए थोड़ा आपको, जिन लोग भागवत देखते हैं उन लोगों को बता रहा हूं मैं, नवम स्कंद के आप नवें अध्याय के सातवें श्लोक को जरा देखेंगे तो आपको थोड़ा मालूम पड़ेगा शंकर भगवान के बारे में भागवतकार का क्या मत है। यदि आपको देखना है तो वहां पर देखना, नवम स्कंद का नवा अध्याय का सातवां श्लोक क्या है। देखो, जब भगीरथ घोर तपस्या करते हैं और तपस्या करने के बाद भगवती गंगा को प्रसन्न कर लेते हैं, ऐसा शंकर जी का स्वरूप आपने कभी सुना नहीं होगा किसी के मुख से कि भागवत के अंदर शंकर जी के बारे में ऐसा लिखा हुआ है। ऐसा आपने सुन लेना आज का श्लोक पहले ध्यान से। तो गंगा ने बोला भगीरथ से, तुम मेरे को जानता है, मेरी सामर्थ्य कितनी है, मैं ऊपर से गिरूंगी तो कहां जाऊंगी, पाताल में जाऊंगी, कमंडल में बंद है, और फिर भी देखो जरा भगीरथ तपस्वी है। और तप का अर्थ ही होता है जिसके जीवन में ऐश्वर्य का महत्व खत्म हो गया ईश्वर के बोध के कारण। ये ध्यान रखना, नहीं पाने के कारण महत्व खत्म नहीं हुआ, ईश्वर के बोध के कारण जिस व्यक्ति के जीवन में ऐश्वर्य का महत्व खत्म हो गया वही व्यक्ति सच्चा तपस्वी है। ईश्वर के बोध के कारण ऐश्वर्य का महत्व समाप्त हो जाए। अब देखो क्या है, किसी के पास भागवत होगी तो देख लेना। वो कहते हैं गंगा जी के साथ में भगीरथ जी महाराज, धारयिष्यति ते वेगम रुद्रस्तु आत्मा शरीरिणाम। क्या बोलते हैं, हे देवी धारयिष्यति ते वेगम, तेरा वेग, धारयिष्यति ते वेगम रुद्र, भगवान शंकर तेरा वेग धारण करेंगे। गंगा ने पूछा कौन है वो, तो भागवत में देखो क्या लिखा है, रुद्रस्तु आत्मा शरीरिणाम, संपूर्ण शरीर जितने प्राणी हैं इन सब प्राणियों की आत्मा कौन है, भगवान, रुद्रस्तु आत्मा शरीरिणाम। और आगे लिखा है, यस्मिन् ओतम प्रोतम, ओतम मिदम प्रोतम विश्वम साटी इव तंतुषु। शंकर कौन है, यस्मिन् ओतम इदम प्रोतम, साटी मैंने साड़ी, जैसे साड़ी में धागे ओत और प्रोत होते हैं, तो कैसे ओत ऐसे होते हैं प्रोत ऐसे होते हैं, हे देवी शंकर भगवान कौन है जो संसार में ऐसे ओत और प्रोत है, धारी सेति ते वेगम रुद्रस्तु आत्मा शरीरिणाम। ये भागवत के नवम स्कंद में है। ये वो महादेव, उसको जाने बगैर आदमी अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए कभी क्या क्या कह देता है। पढ़ो। अच्छा, अब जो दसम स्कंद की बात, अब यहां पे मैं जो बात आपको कहने जा रहा हूं, अब कथा प्रारंभ कल से होगी। अब श्री कृष्ण के प्रति आकर्षण क्यों, दसम स्कंद के स्वरूप के प्रति आकर्षण क्यों, तो इसके लिए आप लोगों ने सुना है,
मैंने कल इसका जिक्र भी किया था, दुनिया में यदि बुद्धिमान व्यक्तियों की परंपरा आती है उस परंपरा में सुखदेव का नाम बड़े आदर से लिया जाता है। गौड़पादाचार्य के गुरु थे सुखदेव जी महाराज, बहुत आदर के साथ में। और बुद्धिमान व्यक्ति की बुद्धि अपने को समर्पित तभी करेगी जब उसके रूप से प्रभावित होगी, उसकी सामर्थ्य से प्रभावित होगी और उसके स्वभाव से प्रभावित होगी। तो ऐसा वर्णन आता है, व्यक्ति को जो बांधने वाली चीज है वो मां की ममता और पिता का मोह है। कहीं व्यक्ति मां की ममता और पिता के मोह से बंध जाता है, लेकिन सुखदेव जी महाराज न उनका व्यास के प्रति मोह और माता की तो बात ही नहीं आती, वो तो काल्पनिक है, वो सब देवी भागवत के अंदर अलग ही ढंग से आया, न मां की ममता उनको बांध सकी, वो तपस्या करने के लिए चले गए। व्यास उन्हें अपनी तरफ नहीं खींच पाते हैं और मैंने बताया आपको, मैंने क्या बताया, भागवत वाले ने बताया, स्वकीयं भवेत् यत् तेज तच्च भागवते अददात् तिरोधाय प्रविष्टोयम् श्रीमद्भागवतारणवे। बुद्धिमानों में बुद्धिमान भगवान के अत्यंत प्रेमी उद्धव जी बहुत प्रेमी हैं। उद्धव के सामने कृष्ण ने अपना हृदय खोल दिया, बुद्धिमान है। ऐसे ही बुद्धिमान सुखदेव जी महाराज हैं। जैसे ही साधना में बैठते हैं समाधि लग जाती है। उद्धव जी ने जब पूछा कि कृष्ण तुम चले जाओगे फिर हमारा क्या होगा, आपने भी देखा होगा दुनिया में लोग मरते हैं तो लोग यही बोलते हैं हमारा क्या होगा। कोई कभी आज तक मैंने ऐसा नहीं सुना, ये मर गया बेचारा, ये गधा बनेगा कि कुत्ता बनेगा, कि अभी मरीन ड्राइव में रहता है कहीं जाकर के, कहीं कहां गली कूचे में कहीं पैदा हो जाएगा, इस बेचारे का क्या होगा, उसके बारे में कोई नहीं सोचता, मेरा क्या होगा। अब उसका फैसला तो ऊपर वाले ने कर दिया। उद्धव ने भी यही कहा, यद्यपि आचार्य शंकर ने गीता के भाष्य में लिखा है जो ऐसे लोग होते हैं उनका अपना कोई प्रयोजन नहीं होता, वो जो ये बात पूछते हैं लोक कल्याण के लिए ये बात पूछते हैं। तो लिखा है स्वकीयं भवेत् यत् तेज, जो कृष्ण भगवान का तेज था तच्च भागवते अददात, वो तेज श्री कृष्ण ने भागवत में दे दिया। तिरोधाय प्रविष्टोयम, और कृष्ण के शरीर से कृष्ण निकला, तिरोधाय प्रविष्टोयम, और वो रूप निकल के भागवत में समा गया। अब ये पोथी में समा गया ऐसा नहीं समझना, शब्दों के अर्थों में समा गया। और मैंने कभी आपको बताया, जब तक रस नहीं निकालते तब तक छिलकों को और गुठली को संभाल के रखते हैं, लेकिन जब रस निकाल देते हैं तो तब क्या करते हैं, छिलके गुठली फेंक देते हैं, लेकिन जब तक निकालते नहीं तब तक संभाल के रखते हो, सड़ भी जाए तो भी ये किनारे काट काट के है। ऐसे ही जब उससे अर्थ को ग्रहण कर लेते हैं, अब वो शब्दों में कृष्ण रूपी अर्थ है ये कैसे पता लगेगा, तो ऐसा वर्णन आता है कि जब सुखदेव जी महाराज गुफा में बैठे तो उनकी समाधि लग गई। समाधि लग गई ना, एक बड़ा प्यारा प्रसंग आता है। एक मुनि तपस्या में बैठे हुए थे, तपस्या में, और ऐसा लिखा है देखो, ध्यानाव्यास वशीकृतेन मनसा यन्निर्गुणं निष्क्रियं। ध्यान अभ्यास किया और बड़ी मुश्किल से मन एकाग्र हुआ। आपका भी होता होगा, थोड़ा होता है, एकाग्र हो गया और जैसे ही मन लगा, भगवान कृष्ण ने उसके गाल पे एक पत्थर मार दिया जोर से। अब इतनी जोर से मारा कि उसकी आंख खुल गई। आंख खुली, कृष्ण को देखा तो इतनी खुशी हो गई। अब ध्यान लगने से खुशी होनी चाहिए कि ध्यान टूटने से खुशी होनी चाहिए? ध्यान लगाने से जो नहीं मिल रहा था, ध्यान के टूटने से वो मिल गया। लेकिन सवाल यह है कि ध्यान तोड़ा किसने, वही आपको मैं खाली बताने जा रहा हूं कि जब कृष्ण का ध्यान वो कर रहे थे, परमात्मा का ध्यान कौन, तो वहां पर व्यास जी का एक शिष्य गया। और देखो, शब्द में अर्थ आना चाहिए। जैसे अभी कोई बोले ना, अभी आपको बोले कोई, बहन आपका पर्स वहां छूट गया, तो आप कैसे भागोगे? क्योंकि पर्स का अर्थ आपको मालूम है उसके अंदर क्या क्या है। ऐसे ही जो बोला जाए उसका अर्थ यदि समझा जाए तो फिर बात कुछ और है। उसके बाहर व्यास का एक शिष्य गया, उसने कहा, अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिघांसया पाय यदप्य साध्वी। कृष्ण का स्वभाव कैसा है, अहो बकीयम कालकूटम। भागवत का कभी दशम स्कंद आप पढ़ेंगे, माया की विशेषता बताई वहां पे। यशोदा बुद्धि का प्रतीक है, बुद्धिमान है। जब पूतना, महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने पूतना शब्द का अर्थ किया अविद्या, वो जब ब्रज में प्रवेश होती है तो ब्रज की नारियां जो कृष्ण से प्रेम करती हैं, उनको ऐसा लगा साक्षात लक्ष्मी इव अपरा, कि साक्षात लक्ष्मी ही कृष्ण से मिलने के लिए आ रही है। और कृष्ण तक पूतना को पहुंचाने वाली कौन, यशोदा। अहो बकीयम, ऋषि अहिंसा में प्रतिष्ठित होकर के चित्त को एकाग्र करता है और बगुला मछली मारने के लिए एकाग्रता करता है, इसी का नाम है बकीयम। अहो बकीयम स्तनकालकूटम यदप्य साध्वी। कृष्ण की सामर्थ्य का बोध, कृष्ण के ज्ञान का बोध। और गतिम लेवे धात्री उचिताम, जो गति उन्होंने देवकी को दी, जो गति यशोदा को दी, वही गति उन्होंने किसको दी,
तो भगवान की सामर्थ्य और भगवान की उदारता का जब उनको सगुण विग्रह की सामर्थ्य और उदारता का बोध हुआ तो समाधि से बाहर निकल गए। और जो पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु, व्यास के शब्द, व्यास का मोह, व्यास का प्रेम जिस सुखदेव को अपनी तरफ नहीं खींच पाया, भागवत के श्लोक उस सुखदेव को अपनी तरफ से खींच पाते हैं, तो आप ऐसा मत समझना कि भागवत के श्लोक नहीं, भागवत के श्लोकों से अर्थ प्रकट हो गया। और जब कभी शब्द से अर्थ प्रकट हो जाता है, अर्थ की अभिव्यक्ति हो जाती है, तब जाकर के जीवन में एक अलग ही घटना घटती है, तब जाकर के उसके प्रति आकर्षण पैदा होता है। ये एक उस तरफ आकर्षित होने का एक महत्वपूर्ण कारण ये है। और थोड़ा अभी 7 मिनट है तो थोड़ा सा मैं दशम स्कंद प्रारंभ कर लेता हूं, ज्यादा भी समय नहीं आप लोगों को गंवाता हूं। ये दशम स्कंद का, इसमें प्रारंभ जो है ना, परीक्षित जी महाराज प्रारंभ कर रहे हैं। तो परीक्षित शब्द का अर्थ आपको थोड़ा सा जरा समझा देता हूं मैं। संस्कृत में एक वार्तिक आता है, अभीतः परीतः समया निक्षाह प्रतियोगेपि। परीतः मैंने चारों तरफ, इक्ष दर्शने धातु है, चारों तरफ किसी को देख रहा है। जैसे कभी कोई व्यक्ति आता है, अभी आपका लड़का आ जाए, कुछ काम पड़ जाए उसको, तो देखता है कि कहां मेरा बाप है, सबको छोड़ छाड़ करके उसके पास पहुंच जाता है, क्योंकि वो अपने बाप को पहचानता है। ऐसे ही परीक्षित शब्द का अर्थ होता है जिसकी आंखें इस सृष्टि में सृष्टा को ढूंढ रही हैं, जिसकी आंखें इस सृष्टि में सृष्टा के लिए प्यासी हैं, और वो प्यास झलकती है, लेकिन आदमी अपनी प्यास की अभिव्यक्ति किसके सामने करता है? घड़े के सामने, प्याऊ के सामने अपनी प्यास की अभिव्यक्ति किसके सामने करेंगे आप, जो प्यास को बुझा सके? परीक्षित ने कहा प्यास को बुझाने की सामर्थ्य, तो परीक्षित को लगा इस आदमी में मेरे प्यास को बुझाने की सामर्थ्य है। पंचदशी आप लोग सुनते हैं, उसमें एक बड़ा प्यारा श्लोक आता है, सत्कर्म परिपाकास्ते करुणा निधिनो धृता। जीवन में जब कोई सत्कर्म उदय होता है तो जीवन में किसी अच्छे आदमी का साथ मिलता है, और जीवन में जब बुरे कर्म का उदय होता है, पापी पापों का उदय होता है, तो किसी बुरे आदमी का साथ मिलता है। मैं आपको कई बार इशारा करता हूं, प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी की एक पुस्तक है, महाभारत के प्राण महात्मा करण, पढ़ने लायक पुस्तक है। आदमी यदि थोड़ा भी आप पढ़े लिखे हैं तो आप उस पुस्तक को पढ़ें और रोए बगैर रह नहीं सकते आप। करण जैसा चरित्र, करण जैसी सेवा, करण जैसा समर्पण किसी व्यक्ति के पास में, महाभारत के पात्र में नहीं है, लेकिन वो आदमी अपने जीवन की मंजिल तक नहीं पहुंच पाया। मैंने कभी आपको दृष्टांत दिया, आपकी गाड़ी भले ही
कितनी भी कीमती हो, लेकिन यदि उसको रेत के ऊपर चलाओगे तो पहिए तो घूमेंगे लेकिन गाड़ी नहीं चलेगी। इसी प्रकार से दुर्दैव से उस व्यक्ति को दुर्योधन का साथ प्राप्त हो गया तो उसके सारे गुण, हमने तो कभी आपको महाभारत भी सुनाया है, कराया नहीं है, सुनाया है, कर्ण की जैसी सेवा परशुराम की, ऐसी सेवा कोई कर नहीं सकता है, वो तो कल्पना के बाहर की बात है। लेकिन उस वो सेवा भी उस व्यक्ति के लिए अभिशाप बन गई। और अर्जुन के जीवन में पचासों कमियां हैं, गाड़ी पुरानी हो, सड़क अच्छी हो तो धीरे 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 आगे बढ़ती रहती है। अर्जुन के जीवन में कमियां सही हैं, लेकिन उसने कृष्ण का पल्ला पकड़ा हुआ है, ये तो उसके जीवन की बड़ी उपलब्धि है। तो अब वो परीक्षित वो है जो ऐसे घड़े के सामने चला गया जो उसकी प्यास बुझा दे। लेकिन परीक्षित के मन में भी बड़ा पक्षपात है। श्लोक सुन लो पहले, फिर व्याख्या कल से करेंगे। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञां च उभय वंश्यानां चरितं परमाद्भुतम्। भगवान सुखदेव जी महाराज से कहते हैं, हे भगवान, क्योंकि नवम स्कंद के अंदर वंशों का वर्णन है तो याद पास की याद दिला रहे हैं, हे प्रभु आपने बड़े सुंदर वंश का विस्तार किया। ये श्लोक भी जो मैंने अभी आपको बताया ना, धारयिष्यति ते वेगम रुद्रस्तु आत्मा शरीरिणाम, ये भी नवम स्कंद का ही है। हाँ, देखना कभी श्लोक को तो आपको कैसे लगेगा कि शंकर भगवान के बारे में भागवत का क्या मत है। उसने कहा आपने वंश का विस्तार से वर्णन किया, और कैसा वर्णन किया, सोम सूर्ययो। अब सूर्य सोमयो होना चाहिए, क्योंकि पहले सूर्य वंश का वर्णन किया, बाद में सोम वंश का वर्णन किया। लेकिन क्योंकि कृष्ण का संबंध सोम वंश से है, इसलिए इष्ट के प्रति पक्षपात वाली बुद्धि होनी चाहिए, लेकिन दूसरे के प्रति निरादर वाली बुद्धि नहीं होनी चाहिए। हाँ, इष्ट के प्रति पक्षपात है, इसलिए वो कहता है कथितो वंश विस्तारो। अब आगे की चर्चा कल करेंगे, टाइम पूरा हो गया।